हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 20 और 21। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रादय तत्थाग्रह न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं भालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे बिभस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो दरमाधवेसि। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरं। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम् चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। ग्रन्था श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। श्लोक संख्या 20 और 21।
कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। गजेंद्र कहते हैं,
एकांतिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति वै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनन्द समोद्रमात्मा तमाक्षरं ब्रह्म पारं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाध्यम् परिपूरमीढम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्द समोद्रमग्ना तमाक्षरं ब्रह्म पारं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रयं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाध्यम् परिपूर्णमीधि एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्द समोद्रमात्मा तमाक्षरं ब्रह्म पारं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाध्यम् परिपूर्णमीधे। अत्यंत ही सुंदर शब्दों में भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं कि मैं एकांतिनो नहीं हूं, क्योंकि जैसे पहले कहा गया श्लोक नंबर 19 में, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन तेष्टा प्रतिमाप्नुवन्ति, कि भगवान की शरण में जो कोई जो जो इच्छा लेकर आते हैं भगवान उनको वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष वो सब तो प्रदान करते ही हैं, परंतु किम चाशिशोरात्यपि देहम, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं। भगवान तो अपना आध्यात्मिक जो नित्य स्वरूप है उनका वो भी जीव को प्रदान कर देते हैं, अपना पार्षद बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तव में जो वास्तव भक्त होते हैं, जो वास्तविक भक्त होते हैं, वो भगवान से किसी भी वस्तु की आवश्यकता के लिए भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान से किसी चीज को मांगते नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, वास्तव में जो अनन्य भक्त होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसके हृदय में और कोई अभिलाषा होती नहीं तो भगवान से मांगेगा क्या? उसके हृदय में क्या इच्छा होती है? एकांतिनो होता है। एकांतिनो का मतलब होता है जो केवल एक ही वस्तु में आनंद प्राप्त करता है, सिर्फ उसको एक ही वस्तु की इच्छा होती है, और वो क्या? भगवान को प्रसन्न करना। वो केवल भगवान को ही चाहता है, भगवान के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की वो इच्छा नहीं करता, वो केवल भगवान की प्रसन्नता का चाहता है। तो वो गजेंद्र कह रहा है, मैं तो एकांतिनो हूं ही नहीं, लेकिन ये तो भगवान को गजेंद्र अपनी दैन्यता के कारण कह रहे हैं। वास्तव में गजेंद्र एकांत भक्त है, लेकिन एक भक्त चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए वो सदैव अपने आप को अधम ही मानता है। वो कभी भी नहीं कहता मैं बहुत ही प्योर डिवोटी हूँ, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। वो सदैव अपने आप को दीन मानता है। जो अपने आप को दीन नहीं मानता, जो अपने आप को अधम नहीं मानता, वास्तव में वो शुद्ध भक्त हो नहीं सकता। तो यहाँ गजेंद्र कह रहे हैं, वास्तव में जो एकांत नो आपके भक्त होते हैं, यस्य न कंचनार्थम, वास्तव में वो आपसे किसी भी वस्तु की वांछति मतलब इच्छा नहीं करते, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कोई भी उनके मन में होती नहीं है। वो चाहते ही नहीं है आपके अतिरिक्त और कुछ, तो भला वो आपसे क्या मांगेंगे। और जब आपसे किसी और वस्तु की इच्छा नहीं करते तो भला दूसरों से क्या मांगेंगे। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं, भक्त कहते हैं आपके हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल कृष्ण प्रेम चाहिए, लेकिन हृदय में अनेकों कामनाएं होती हैं, दूसरे दूसरे लोगों से मांगते रहते हैं। तो फिर वो एकांतिक नो भक्त नहीं हो सकते भले, लेकिन अगर जीव के हृदय में कोई इच्छा है तो फिर उसे भगवान से ही मांगनी चाहिए, किसी और देवी देवता से या किसी व्यक्ति से नहीं मांगना चाहिए। ऐसे जब भगवान की भक्ति करता है ना जीव, जब हृदय से प्योर हो जाता है और हृदय के अंदर भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, तो इससे क्या होता है, जो इच्छाएं हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं, धीरे 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 कामनाएं समाप्त हो जाती। लेकिन जब तक इच्छा पूरी नहीं हुई है या फिर समाप्त नहीं, वास्तव में जीव इच्छा पूरी करके इतना संतुष्ट नहीं होता है जब जितना संतुष्ट इच्छा के ना होने से होता है। इच्छा पूरी हो जाएगी तो डेफिनेटली दूसरी इच्छा आएगी, और इच्छा पूरी करके भी कोई आनंद नहीं प्राप्त होता है। वास्तव में आनंदित वही व्यक्ति होता है जिसके हृदय में कोई इच्छा ही नहीं हो। और इच्छाएं कैसे समाप्त होती हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते करते करते, भगवान की कथाओं को श्रवण करते 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 जीव एकांतिन भक्त बन जाता है। लेकिन अभी गजेंद्र कहते हैं कि मैं तो एकांतिको भक्त नहीं हूँ, मुझे तो इच्छा है, मैं इस कष्ट से दूर होना चाहता हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, बहुत कष्टमय अवस्था में हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपसे मांग रहा हूँ कि मुझे इस कष्ट से दूर करो। तो यदि जीव के मतलब गजेंद्र से हमें सीखना चाहिए कि यदि हमारी कोई इच्छा है, यदि हमें कोई कष्ट है, संकट है, तो भगवान से अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इस कष्ट से हमें आप ही छुड़ा सकते हो। तो गजेंद्र कह रहे हैं, वाचन्ति एव भगवत प्रपन्न, जो आपके अनन्य भक्त हैं उन्हें आपकी सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं होती है, वे पूर्णतया शरणागत होकर आपकी पूजा करते हैं, वो आपकी शरण में आते हैं और केवल आपकी प्रसन्नता चाहते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि इस जगत का सुख तो वास्तव में जगत में कोई सुख है ही नहीं, है ना। इस जगत का सुख जो है वो शास्त्र कहता है सीकर, सीकर के बराबर है। सीकर क्या समझते हैं आप, जैसे एक सीक को, एक ना जो लकड़ी का पीस होता है ना, उसको लोटे में डिबो कर यदि उसको छड़केंगे ना ऐसे, तो छड़केंगे तो उसमें जो थोड़ा सा पानी डिप करने से थोड़ा सा एक पानी की बूंद रह गई होगी ना, उसको जब छड़केंगे तो दीवार पर बहुत सारी छोटी 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 बूंदें आ जाएंगी। वो जो छोटी 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 बूंदें होती है ना, जो एक बूंद से ना हुई थी, उसकी एक बूंद को सीख कर कहते हैं। तो सोचो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यासा है, उसे बहुत ज्यादा तृष्णा हो, प्यास लगी हो, और उसको एक सीख कर इतनी छोटी सी बूंद लेके देह के ये कहा जाए हाँ तृप्त हो जाओ, तो क्या वो तृप्त हो सकता है? जीव प्यासा है, जीव आनंद चाहता है, जीव संतुष्टि चाहता है, और ये भौतिक जगत का सुख तो केवल सीकर के बराबर है। वो भला जीव को क्या आनंद देगा? जीव को तो आनंद का समुद्र चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा? आगे कहते हैं अत्यद्भुतम च चरितम सुमंगलम। अत्यद्भुतम, आपके जो चरित्र हैं आपके सुमंगलम बहुत ही मंगलदायक हैं, अद्भुत चरित्र हैं आपकी, आनंदमय कथाएं हैं, आपका नाम, आपका गुण, आपका यश, आपकी कथा, वो तो सुमंगल। इस भौतिक जगत में कुछ भी मंगल नहीं है। हर वस्तु हमारे अमंगल का, हमारी वेदना का कारण बनती है, लेकिन भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान का पवित्र नाम है, वो अतिशय सुंदर है, अतिशय मंगलमय। चरित्र को जब गायंती, जो गाते हैं, तो फिर उनको क्या मिलता है? आनंद समुद्र मखना, उनको तो आनंद का समुद्र मिल गया। अब कहाँ वो भौतिक जगत का सुख जो सीकर के बराबर है, और कहाँ आनंद समुद्र। तो जो वास्तव में ज्ञानी है, जो वास्तव में प्योर भक्त है, उनको भौतिक जगत की किसी भी वस्तु में आनंद आता ही नहीं है। वो तो आपके पवित्र नाम को गाते, गायन का मतलब है गाते रहते हैं आनंद से, यही उनके लिए अक्षय आनंद का समुद्र है, वो इसी में मग्न रहते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा यदि कोई सुख है एक भक्त के लिए, एक वास्तविक जीव आत्मा को यदि किसी में आनंद प्राप्त हो सकता है, तो वो है भगवान के चरित्र को गाने से, भगवान के पवित्र नाम का जप करने से, भगवान की कथाओं को श्रवण करने से। तो श्रवण कीर्तन ही आनंद का और सुख का समुद्र है, और वास्तव में हर एक जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यही आपको वास्तविक आनंद प्रदान कर सकता है। महाप्रभु कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। ये आनंदम बुद्धिवर्धनम, ये वर्धित करेगा आपके आनंद को, और हर एक प्रतिपदम पूर्ण अमृत, हर एक पग पे आपको पूर्ण अमृत का आस्वादन कराएगा। अमृत का मतलब जानते हैं? वास्तव में अमृत का मतलब तो वह अमृत है जो देवता लोग पीते हैं, लेकिन वो अमृत तो इस कथा अमृत के सामने हीन है, तुच्छ है। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यह भागवत अमृत की कथा सुनाने जा रहे थे, तो सारे देवता अमृत कलश लेकर आए थे कि यह भागवत आप उन्हें मत सुनाइए, उनको तो मृत्यु से भय है, तो आप इनको ये अमृत पिला दीजिए, तत्क्षण जो सांप आएगा वो उनको कुछ नहीं कर सकेगा, आप यह कथा अमृत हमें दे दीजिए। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें स्वर्ग के अमृत से कोई आकर्षण नहीं होता है, वो तो गायन्ति आनंद समुद्र मग्न, वो तो सदैव भगवान के कथाओं के समुद्र में मग्न रहते हैं। और क्या करते हैं भगवान बताते हैं 10.9 में, मच्चिता मत्कता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त माम नित्यम दुष्यन्ति चरमर्ति च। मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, उनका तो सिर्फ एक ही काम है, मत चिता मत गता प्राणा बोधयंत, उनका मन मुझ में लगा हुआ है, वो केवल मेरे बारे में ही एक दूसरे से बात करने में अत्यंत आनंद प्राप्त करते, वो बात करते करते ऊबते नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति भगवान के विषय में बात करते 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 कभी ऐसा हो कि उनको थकान महसूस हो, या उनको ऐसा लगे कि एक ही के बारे में क्या बात करना, अभी किसी और टॉपिक को उठाते, नहीं। दुष्यंति च रमणति च, उनका आनंद उसी में है, उनका रमण उसी में है, उसको वही उनके लिए आनंद का समुद्र है, वही महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सदैव जपता रहता है।
कंटिन्यूस इस पवित्र नाम का जप करता रहता है, परंतु उसी में उसको आनंद आ रहा होता है। तो ये वास्तविक भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके विषय में बता रहे हैं कि उनको तो केवल उसी में आनंद आता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या बात है कि भक्तों को केवल भगवान का गान और कीर्तन करने में आनंद आता है। तो ये बता रहे हैं अत्यद्भुतम तच्चरितम सुम, कि ये बहुत विशेषता है भगवान के चरित्र की, भगवान के नाम की, भगवान की कथाओं की, कि सुमंगल है, अत्यद्भुतम है, अद्भुत कथाएं हैं भगवान की। श्रवण करते 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 जीव इस भौतिक जगत के दुखों से उनका निवारण हो जाता है। जैसे कथा में एक नशा है, जो लोग इस संसार के भौतिक दुखों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं ना, वो शराब का आश्रय लेते हैं। और उनसे पूछा जाए कि यदि आप शराब पीते हो तो क्यों पीते हो, तो कहते हैं जब तक शराब का नशा होता है तब तक हमें भौतिक दुख सताता नहीं है। लेकिन इस भौतिक जगत की शराब का नशा कितना होगा, एक घंटा, दो घंटा, ज्यादा से ज्यादा एक रात, सुबह को जब उठेंगे तो नशा गायब, दुख शुरू। लेकिन भगवान की कथा का जो नशा है वो जीवन पर्यंत रहता है, सारे जीवन में उसका आनंद रहता है। और उस आनंद में जब जीव मदहोश हो जाता है तो भौतिक दुख उसको बिल्कुल महसूस ही नहीं होते हैं। तो इसलिए कहते हैं सुमंगल, भगवान का जो, भगवान की कथा है, भगवान का चरित्र है, भगवान का नाम है, वही जीवन जीव को वास्तविक आनंद समुद्र मग्न, आनंद के समुद्र में मग्न कर सकता है। भगवान की विशेषता बताते हुए आगे कहते हैं तमक्षरम ब्रह्म परम परेश त्वम तम अक्षरम। अक्षरम का मतलब है जिसका कभी क्षय न हो। क्षर का मतलब होता है समाप्त हो जाने वाला, और अक्षर का मतलब है कि जिसका कभी समाप्त नहीं हो, मतलब अनश्वर, अविनाशी। तो भगवान का सब कुछ, भगवान का दिव्य नाम, भगवान का दिव्य धाम, भगवान का चरित्र, वह अक्षर है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है उस सब का नाश हो जाता है, है ना। सूर्य, चंद्रमा, सारे ब्रह्मांड, एक समय प्रलय आता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु भगवान अक्षर है। बल्कि अक्षर में भी परम ब्रह्म, परम परम ब्रह्म है। यानी कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कुछ दो प्रकार के जीव हैं, क्षर हैं और अक्षर हैं, परंतु मैं दोनों से अतीत हूँ, इसलिए वेदों में और इस जगत में पुरुषोत्तम नाम से पूजा जाता हूँ। तो भगवान पर ब्रह्म है, परम परेशम। परेशम का मतलब होता है ईश, ईश का मतलब होता है ईश्वर, और परम ईश्वर या परेश का मतलब होता है ईश्वरों का भी ईश्वर, मतलब जो ईश्वर हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, बड़े बड़े देवता हैं, वो एक तरह से ईश्वर हैं, सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, परंतु उन समस्त ईश्वरों का परम ईश, परम पर ईश मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। इस भौतिक जगत में कोई भी जीव अपने आप को कंट्रोलर समझता है कि मैं कंट्रोलर हूँ। एक व्यक्ति जो एक घर में पिता है या फिर बड़ा है, वो भी सोचता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, परंतु मनुष्य सब तरह से कंट्रोल्ड है ना। अगर देखा जाए तो हर एक वस्तु का कंट्रोल्ड है वो, किसी भी वस्तु में, किसी भी कार्य में जीव स्वतंत्र नहीं है। अपने शरीर को भी वो सीधी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। अगर वो कंट्रोलर होता तो कभी बूढ़ा न होता, यदि वो अपने शरीर का कंट्रोलर होता तो कभी बीमार न होता, कभी मरता नहीं। तो इस भौतिक जगत में हम सब कंट्रोल्ड हैं, और वो कंट्रोलर कौन है, सुप्रीम कंट्रोलर, परम परेशम। तो भगवान बताते हैं, शास्त्र कहता है मत भयातिवातिवातोयम, कि जो ये हवा संसार में बह रही है वो मेरे भय से बह रही है। दयत अग्नि वर्षत इंद्र सूर्य तपंति मत भयात, कि अग्नि जो दहक रही है,
जो इंद्र वर्षा कर रहा है, सूर्य में से जो तपत निकलती है, वो सब मेरे भय के। भय का मतलब ये नहीं कि डर, मतलब मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। इस संसार में देखिए कि कोई भी इन वस्तुओं को कंट्रोल, कोई वायु अगर बह रही है या कभी वायु नहीं होती है तो क्या उसको वापस आज्ञा दे सकता है कि नहीं आज हवा क्यों कम है, आप हवा हमें चाहिए, आप आ जाओ। वायुदेव को बुला सकता है? नहीं। अगर किसी दिन सूर्य मान पड़ जाता, मतलब ठंडी होती है बहुत, या जाने वाला तो सूर्य अस्त होने वाला होता है, तो सारे संसार की शक्ति को एक तरफ करके सूर्य को क्या हम अस्त होने से रोक सकते हैं? या किसी दिन ऐसा हो कि हम सूर्य को उगाना चाहते हो पहले, मतलब रात के समय हम चाहते हैं कि इस समय दोपहर हो जाए और सूर्य आ जाए, सूर्य प्रकट हो जाए, तो क्या कोई ला सकता है? नहीं। ये सब वस्तुएं जो कुछ भी भौतिक जगत में है वो सब भगवान की परम कृपा, परम कंट्रोल के साथ भगवान ही उन पर अध्यक्षता रखे हुए हैं। इसी के कारण ये पूरा संसार नियमित स्वरूप से चल रहा है। आगे कहते हैं अव्यक्तम, अव्यक्त है भगवान। अव्यक्त का क्या मतलब होता है? कि जो दिखे नहीं। व्यक्त का मतलब होता है जो भौतिक नेत्रों से या भौतिक वस्तुओं से, जिसको हम जान सकें, समझ सकें। लेकिन अव्यक्त का मतलब होता है जो इन भौतिक अदृश्य हो, भौतिक नेत्रों से दिखे नहीं अथवा मन तथा इंद्रियों से अनुभव न किया जाने वाला हो, जिसको हम समझ न सकें, वास्तव में उसको अव्यक्त कहा जाता है। तो भगवान के लिए कहा जाता है कि वो अव्यक्त है। जब वो अव्यक्त है, इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, तो भला भगवान को कौन प्राप्त करेगा, है ना? कैसे प्राप्त करेगा? तो बताते हैं बहुत ही सुंदर, आध्यात्मिक योग गम्यम, कि जो आध्यात्मिक योग करते हैं उनके द्वारा गम्यम, गम्यम मतलब प्राप्य है, यानी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता, परंतु आध्यात्मिक योग, यानी आध्यात्मिक मतलब आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर जो योग करता है, यानी भगवत सेवा करता है, कैसे? भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, भगवत सेवा को करना प्रारंभ करता है, तो गम्य, फिर प्राप्त किया जा सकता है। वरना तो भगवान को इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझना इम्पॉसिबल है। नहीं समझ पाते हैं जो भगवान को, भगवान की शरण में नहीं जाते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो भगवान को नहीं समझ सकते। फिर क्या बोलते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान को समझा नहीं जा सकता, भगवान निराकार है, निर्विशेष है, भगवान कुछ तो कहते हैं, भगवान है ही नहीं। क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि वो भगवान को, भगवान की भक्ति नहीं करते। आध्यात्मिक योग गम्य, तो जो आध्यात्मिक योग करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। अनंत माध्यम, सॉरी, अतीन्द्रियम सूक्ष्मम एवा तिदूरम। अतीन्द्रिय यानी अति का मतलब होता है दूर, यानी भौतिक इंद्रियों से, अनुभूति से परे है, इंद्रियों से दूर है, और सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा सा एकदम, लेकिन छोटा सा मतलब ये नहीं कि भगवान छोटे हैं, भगवान तो बृहत है ना। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति। भगवान भौतिक जगत के हर एक वस्तु से क्या आध्यात्मिक जगत में भी वो विभू है, लेकिन फिर भी भगवान को सूक्ष्म कहा जा रहा है। सूक्ष्म का मतलब है वो इतने सूक्ष्म हैं कि उनको समझा नहीं जा सकता। अतीन्द्रिय सूक्ष्म यानी इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं समझा जा सकता। एवं अति दूरम, और इसके अलावा कहा गया अति दूर है वो, लेकिन वास्तव में भगवान हमसे दूर नहीं है। दूर तब तक लगते हैं जब तक कि हम आध्यात्मिक योग को नहीं अपनाते हैं। जब तक हम देहात्म दृष्टि से भगवान को देखने का या समझने का प्रयास करते हैं, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब कहा जाता है अतीन्द्रियम सूक्ष्मम एवं अति दूरम। वो इंद्रियों से परे है, सूक्ष्म है, बहुत दूर है, इन इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। अनंत आध्यम, अनंत का मतलब होता है बहुत बड़ा, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए पहले कहा गया सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, और यहाँ पर कहा गया अनंत है, असीम है, तो ये दोनों मैच नहीं करते। लेकिन सूक्ष्म का मतलब होता है कि वो इतना असीम है, अनंत है, कि वो उनको भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। आद्यम है, आद्यम मतलब हर एक वस्तु का आदि कारण है, परिपूर्णम है, यानी भगवान कभी भी किसी भी अवस्था में अपूर्ण नहीं है। वो जब स्वयं होते हैं अकेले तब भी वो पूर्ण है, जब वो अपने से पूरे सारे ब्रह्मांड निकाल देते हैं तब भी वो पूर्ण रहते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो वहां भी पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण है, उनसे जो निकलता है वो भी पूर्ण है, जो बच जाता है वो भी पूर्ण है। तो इसको कहा जाता है परिपूर्णम। ऐसे भगवान को मीढ़े, ईडे का मतलब होता है, ईडे मतलब मैं नमस्कार करता हूँ, अनंत माध्यम परिपूर्ण मीढ़े, कि मैं ऐसे भगवान की शरण में आया हूँ। अनुवाद देखिए, ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतया शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के मार्ग में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, है ना, एकांतिनो यस्य न कंचना, वो कुछ नहीं चाहते भगवान से, किंतु मैं तो संकट में हूँ। वो कहते मैं तो एकांत दिनों नहीं हूँ, मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी है, परेशान। तो ऐसे भगवान की शरण में आया हूँ जो केवल दिव्य भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्य है, आध्यात्मिक योग गम्य, केवल दिव्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं, वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक नंबर 1.1.11 बताते हुए कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करे। अन्य अभिलाषिता शून्य, सारी अभिलाषाओं को खत्म करके, कौन सी अभिलाषा है, ज्ञान कर्माधिनावृतम, जो सकाम कर्म, जो भौतिक लाभ या ज्ञान इन सबसे ढकी हुई है, ऐसी सारी आवृत है, ऐसी सारी अभिलाषिताओं को खत्म करके, अनुकूलेन कृष्णानु, जो भगवान के लिए अनुकूल है, बस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए जो अनुकूल है, केवल वही कार्य करें। शीलनम भक्तिरुत्तमा, वही उत्तम भक्ति है। तो यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। अनन्य भक्तों को भगवान से कुछ भी नहीं मांगना होता, किंतु गजेंद्र परिस्थिति वश अविलंब वर मांग रहा था, क्योंकि उसके समक्ष बचाव का कोई अन्य उपाय नहीं था। कभी कभी जब कोई विकल्प नहीं रहता है तो शुद्ध भक्त भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहने के कारण किसी न किसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भक्तों को दुख होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आ जाता है या कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है तो भगवान को कहते हैं कि कृष्ण कृपा करो। भले ही कृष्ण को सब कुछ पता होता है लेकिन उसको अच्छा भी लगता है कि मेरा भक्त मेरे पास आया है, मुझसे याचना कर रहा है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई भक्त भगवान के पास जाता है किसी चीज के लिए मांगने के लिए। तो
भक्त के ऊपर जब विपत्ति आती है या जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है वो किधर जाएगा, क्योंकि उसके पास तो भगवान के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है, उसका कोई आश्रय नहीं है, तो भगवान के पास ही जाता है और प्रार्थना करता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु ऐसी प्रार्थना में खेद भी व्यक्त किया जाता है, हृदय में एक खेद होता है, भक्त के दुख होता है कि कृष्ण वैसे तो तुम्हारी भक्ति किसी इच्छा से नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी परिस्थिति के अनुसार मुझे यह वरदान चाहिए आपसे। तो उसके हृदय में खेद होता है कि मैं अनन्य भक्त नहीं हूं, मैं भगवान का एकांतिक भक्त नहीं हूं। तो आगे कहते हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है वह सदैव ऐसे दिव्य पद पर स्थित रहता है जहां किसी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे जैसे भक्त भगवान की दिव्य लीलाएं श्रवण करता है, भगवान के पवित्र नाम का गान करता है, तो ऐसे क्या होता है, विदनोति सुहृत्सां, भागवत कहती है श्रवताम स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जब कोई बहुत ही प्रेम के साथ भगवान की कथाओं को श्रवण करता है तो फिर भगवान स्वयं उसके हृदय में आ जाते हैं, विदनोति सुहृत् और हृदय की गंदगी को साफ करते हैं। वास्तव में ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी गंदगी है हृदय की, कि हमारे हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त किसी और वस्तु की या व्यक्ति की इच्छा रह जाती है। तो भगवान उसके हृदय से समस्त आसक्ति, भौतिक आसक्ति है, उसको समाप्त कर देते हैं और उसके हृदय में जो सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, कथाओं को श्रवण करता है, उसके हृदय में कोई भी इच्छा आती नहीं है, भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती उसे। लेकिन जब तक कोई नितांत शुद्ध भक्त नहीं होता है तब तक वह संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। यानी कि फिर उसे वो दिव्य आनंद का रस नहीं आ रहा होता है, वो करता भी है लेकिन अभी इच्छाएं बाकी रहती हैं, तो फिर उसके हृदय में इच्छाएं भी आती हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जब धीरे 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 सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो गायंत आनंद समुद्र मन, फिर उसको केवल भगवान के नाम और लीलाओं का कथन करने में ही आनंद के समुद्र में रहने का सा आनंद प्राप्त होता है। तो धीरे 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 हृदय की समस्त मलिनता समाप्त हो जाती है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग वो नहीं कर सकता जिसके हृदय में इच्छाएं होती हैं। ऐसा आनंद सामान्य भक्त को मिलना संभव नहीं है, हर एक किसी को मिलता नहीं है जो दिव्य पथ पर आ जाते हैं। उन्हीं को जैसे शुरू शुरू में हमारे हृदय में इच्छाएं होती हैं, लेकिन जैसे 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 आगे बढ़ते जाते हैं तो इच्छा शून्य हो जाता है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखलाया है कि किस तरह सहज रूप में भाव विभोर होकर कीर्तन श्रवण तथा नृत्य द्वारा दिव्य आनंद उठाया जा सकता है। महाप्रभु अत्यंत ही सुंदर रीति से हमें बताते हैं यही भक्ति योग है कि किस प्रकार से भगवान के पवित्र नाम का जप करने में, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में आनंद उठाया जाता है। और वह आनंद जब जीव को प्राप्त होता है फिर उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, न धनम न जनम न सौंदर्यम। इस भौतिक जगत में जीव अगर देखा जाए तो इन्हीं वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, धन चाहिए, अच्छा जन्म चाहिए, अच्छी स्थिति चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर स्त्री, इन सब चीजों। लेकिन जो वास्तव में भगवान का भक्त हो जाता है उसे ना धनम ना जनम ना सौंदर्यम कविताम वा जगदीश काम है, उसे ये सब नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर् अहितुकी तवे, केवल भगवान की अहितुकी भक्ति चाहिए। तो यही भक्ति योग है जिसके हृदय में कोई और अभिलाषता न हो। अतएव गजेंद्र ने कहा आध्यात्मिक योग गम्यम, जिससे सूचित होता है कि जब तक कोई इस दिव्य पद पर स्थित न हो, जब तक वह भगवान तक तब तक वह भगवान तक नहीं पहुँच सकता। भगवान के पास पहुंच सकने का वर अनेक अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है।
फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह वर सबों के लिए सबों को प्रदान किया है, यानी कि किसी के लिए भी। चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति या अमुक व्यक्ति जो है वो भगवान का भजन नहीं कर सकता, नाम संकीर्तन, मनुष्य को तो छोड़िए, महाप्रभु ने तो पशुओं को भी नाम का अमृत दिया, पशुओं को भी कृष्ण प्रेम दिया, तो उन पतित आत्माओं तक को जिनके पास आध्यात्मिक जीवन की कोई भी विरासत नहीं है, वास्तव में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में ऐसा ही देखा जाता है। अतएव भक्ति योग का मार्ग वह निर्मल विधि है जिससे भगवान तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि बाकी जितने भी योग हैं इस संसार में, ये योग वो योग जितने भी योग किए जाते हैं वो भगवान तक नहीं पहुंचाते जब तक कि जीव भक्ति योग का आश्रय नहीं लेता है। बाकी जितने भी योगा किए जाते ना आजकल, तो योगा केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है, उनको पता भी नहीं होता है कि योग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, आध्यात्मिक योग कम्य, वही भक्त्या हम एकया ग्राही, एकया मतलब एकमात्र, खाली भक्ति के द्वारा ही भगवान को, केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता 7.1 में कहते हैं मई आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रो। हे प्रथापुत्र अर्जुन, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्णतया भावित होकर योग अभ्यास करने और मन को मुझ में अनुरक्त करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित जान सकते हो, यानी भगवान को पूरी तरह से यदि जानना है तो भगवान के अंदर अपना मन लगाना होगा, मन को भगवान में अनुरक्त करना होगा, भक्ति योग का अभ्यास करना होगा। मन कैसे लगेगा? केवल भगवान की कथा को श्रवण करके ही भगवान के अंदर मन लगेगा, केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करने से ही भगवान के अंदर मन लगेगा, वरना तो भौतिक वस्तु और व्यक्तियों से मन कभी हटेगा ही नहीं, तो भला भगवान में कैसे लगेगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते मात्र कृष्ण भावना अमृत में अनुरक्त होने तथा निरंतर कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से मनुष्य भगवान को संशय रहित होकर पूरी तरह जान सकता है। तो गजेंद्र, ऐसे परम ईश्वर, परम ब्रह्म और अक्षरम भगवान की शरण में है और उनसे यही याचना कर रहे हैं कि कृपया मेरे इस दुख को दूर कर दीजिए और मुझे इस भौतिक जगत से निकाल कर अपना पार्षद बना दीजिए, अपने संरक्षण में, अपनी शरण में ले लीजिए। एक बार शुरू से पढ़ेंगे, कृपया साथ दीजिएगा। श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोरिधि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशीक्षितं। श्री गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायापि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् योस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं परीक्षते स आत्ममूलो वदु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासी गहनं गभीरम्
यस्तस्य पारे विविराजते विभो नायस्य देवा ऋषय पदं विदु जन्तु पुनः कोर्हति गन्तुमीरितु यथा नटस्या कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानु क्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्त संगा मुनया सुसाधव चरन्त्यलोक व्रतमावरणं वने भूतात्म भूता सुहृद समेगति न विद्यते यस्य न च जन्म कर्म वा न नाम रूपी गुणदोष एव वा तथापि लोका यय संभवाय स्वमाययातान् यनुकालमृत्सति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्यता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय ग्रहदृष्ट्रये सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय धे नमः नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गा परायणाय गुणारिच्छन् नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृत् मनसि प्रतीत प्रत्यत्रिषे भगवति बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन तैष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात् यपि देहमव्ययम् करोतु मेदप् हृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाचन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्द सामोत्रमग्ना तमाक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाध्यम् परिपूर्णमीधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छी तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।